आज है 11 सितंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। बीबीसी हिंदी के साथ ट्विटर चैट में नीतीश कुमार ने कहा, गठबंधन ने चुना उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, फैसला जनता के हाथ में। 2006 के मुंबई धमाकों के मामले में मकोका कोर्ट ने 12 लोगों को दोषी करार दिया।
ये ऐतिहासिक फैसला मैं मानता हूँ। इसके लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, फिर भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव कर दी।
पाकिस्तान की रेंजर टीम से राजनाथ सिंह ने की मुलाकात।
राजनाथ जी ने ये कहा कि दोनों तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए, ये कहा। पहला फायरिंग ना करे तो पहला फायरिंग नहीं होगा तो जवाब ही नहीं होगा।
1965 युद्ध की 11वीं कड़ी में आज बात होगी बरकी की लड़ाई पर, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीबीसी हिंदी के साथ ट्विटर चैट के दौरान जातीय संघर्ष के सवाल पर कहा, पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग को त्वरित न्याय मिले इसके लिए उनकी सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिसके कुछ अच्छे परिणाम भी जनता के सामने हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है और वो किसी गठबंधन का हिस्सा बने या ना बने, ये उसका अपना निर्णय है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीरिया से जुड़ी गतिविधियों के लिए रूस और अमेरिका के बीच सैनिक तालमेल की बात कही है। उन्होंने कहा कि पेंटागन को रूसी सेना के साथ सहयोग पर प्रतिबंध हटाने और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार से बातचीत पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा,
Но координация важна и в плане недопущения различных непреднамеренных инцидентов.
अनचाहे हादसों से बचने के लिए तालमेल काफी महत्वपूर्ण है। हमने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया है कि अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ तालमेल किया जाए। कभी नहीं से अच्छा तो देर ही है, लेकिन हम गठबंधन के सदस्यों से सीरिया की सरकार और सीरिया की सेना से बातचीत शुरू करने की अपील करते हैं। ये थे सर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से तेल के उत्पादन में कमी आ सकती है। ओपेक के सदस्य देशों ने तेल की कीमतें कम कर दी हैं, जिनमें मुख्य है सऊदी अरब। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से नॉर्थ सी, रूस और अमरीका में कई ऊर्जा कंपनियां बंद हुई हैं। अगस्त में तेल की कीमतों में पिछले 6 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि अगले साल तक तेल के उत्पादन में भारी कमी देखी जा सकती है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने चेतावनी दी है कि मध्य सितंबर के बाद से जो प्रवासी गैर कानूनी तरीके से हंगरी की सीमा में प्रवेश करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बुडापेस्ट में कहा कि प्रवासियों ने हंगरी की सरकार का विरोध किया है, रेलवे स्टेशनों पर कब्जा किया है और रजिस्ट्रेशन का विरोध भी किया है। इस बीच एक फुटेज भी सामने आया है जिसमें सर्बिया की सीमा के पास हंगरी के रुएश्क में एक शरणार्थी शिविर में प्रवासियों से हो रहा अमानवीय व्यवहार दिखाया गया है। आयरलैंड के एक कार्यकर्ता ने बताया कि प्रवासियों को बाड़े में रखा जा रहा है और जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड टावर हमलों की 14वीं बरसी पर अमेरिका के व्हाइट हाउस में 1 मिनट का मौन रखा गया। राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इसमें शामिल हुए। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर लाइव सुशीला सिंह के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महागठबंधन ने उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है और फैसला बिहार की जनता के हाथ में है। बीबीसी हिंदी के साथ ट्विटर चैट में नीतीश कुमार ने कई सवालों के जवाब आज दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस चैट पर नजर बनाए हुए थे हमारे सहयोगी पंकज प्रदर्शी, जो लाइव स्टूडियो में आ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। क्या हाइलाइट्स रही इस चैट की आज पंकज?
देखिए सुशीला, कई सारे सवाल थे और जवाब भी जाहिर है उसके हिसाब से थे, लेकिन जिसका आपने जिक्र किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक श्रोता ने और पाठक ने हम उनसे पूछा था कि गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू को बराबर सीटें दी गई हैं, और अगर राष्ट्रीय जनता दल को ज़्यादा सीटें आईं तब भी क्या लालू जी आपको मुख्यमंत्री बनाने पर राजी होंगे? ये कई लोगों के सवाल हैं, कई बार उनसे पूछे भी जाते हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लालू जी ने कई बार ऐसे सवालों का जवाब दे दिया है, गठबंधन ने मुझे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है, अब फैसला बिहार की जनता को करना है। हमारे सहयोगी मुकेश शर्मा ने उनसे सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह भाजपा के दबाव में गठबंधन से अलग हुए हैं? हमारे श्रोताओं को याद होगा कि जो एक जनता परिवार बन रहा था उस महागठबंधन से मुलायम सिंह यादव अलग हो गए थे। इस पर नीतीश कुमार का कहना था कि समाजवादी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना या ना बनना उनका अपना निर्णय है। एक बहुत ही रोचक सवाल पूछा गया था उनसे कि क्या आप ओवैसी से डरते हैं? आपको पता होगा कि पिछले दिनों उन्होंने किशनगंज में एक रैली की थी, काफ़ी भीड़ जुटी थी और उसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। उसके जवाब में उन्होंने बड़े ही कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट वे में इसका जवाब दिया या न दिया, जो आप कह सकते हैं, उन्होंने सिर्फ इसके जवाब में ये कहा कि मेरे लिए बिहार की जनता का आशीर्वाद और समर्थन ही मायने रखता है। तो सीधे तौर पर वो इस सवाल का जवाब टाल गए। हमारी सहयोगी रूपा झा ने उनसे यह सवाल पूछा कि जातीय हिंसा के मामलों में दलितों को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है, जिसके जवाब में नीतीश ने ये कहा कि 10 वर्षों में हर वर्ग को त्वरित न्याय मिले इसके लिए उनकी सरकार ने कई कोशिशें की हैं, इसके अच्छे परिणाम भी जनता के सामने हैं। अगर कुछ मामलों का समाधान लंबे समय से नहीं हो सका है तो मैं यानी नीतीश कुमार आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार उनके समाधान की कोशिश करेगी। एक और सवाल हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने पूछा था कि क्या आपने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में मोदी विरोधियों के संभावित विद्रोह को देखते हुए दाव खेला था जो नहीं चला? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा के समय भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक और वैचारिक मुद्दों पर आधारित था। सुशीला, और भी कई जवाब हैं लेकिन समय कम है, अगले कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे।
जी बिल्कुल। और तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार ने की बीबीसी हिंदी के साथ ट्विटर पर चैट, पूरी जानकारी दे रहे थे पंकज प्रियदर्शी। दो हजार छह के मुंबई धमाकों के मामले में मकोका कोर्ट ने 12 लोगों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल 13 अभियुक्त थे। इस मामले में सरकारी वकीलों ने कुल 192 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने 51 गवाह पेश किए। आपको याद ही होगा कि मुंबई में 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोग मारे गए थे और 824 घायल हुए थे। एक रिपोर्ट के साथ मुंबई से अश्विन अघोर।
11 जुलाई 2006 को मुंबई के उपनगरीय ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 179 लोगों की जान गई थी और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। महज 11 मिनट के अंतराल पर हुए इन धमाकों ने सारे मुंबई शहर को दहला दिया था। मुंबई एटीएस तथा क्राइम ब्रांच ने कड़ी मेहनत के साथ इन धमाकों की जांच कर 13 युवकों को गिरफ्तार किया था। इस तफ्तीश की विशेषता यह थी कि पुलिस को मौके से एक भी सुराग नहीं मिला था। दुनिया में अन्य जगहों पर हुए बम धमाकों में कम एक जिंदा बम मिला है, जो तफ्तीश में सबसे अहम सबूत रहा है। लेकिन 11 जुलाई 2006 को हुए इन धमाकों में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जो भी सबूत थे वह उस दिन हो रही भारी बारिश के कारण नष्ट हो गए थे। ट्रेनों के मलबे से मिले प्रेशर कुकर के हैंडल के आधार पर सारी तफ्तीश हुई और 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया। 8 साल तक चली सुनवाई के बाद आज मुंबई के विशेष मौका न्यायालय ने 13 में से 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है तथा एक को सारे आरोपों से बरी कर दिया है। उन धमाकों के पीड़ितों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, उनकी इतनी लंबी प्रतीक्षा रंग लाई है। इन धमाकों में जख्मी प्रभाकर मिश्रा से हमने बात की।
जो उस दिन हुआ उसमें तो मैं घायल था, कान के पर्दे फट गए थे, फर्स्ट क्लास वाले कंपार्टमेंट में था, खड़ा था, काफी भीड़ थी ट्रेन में, काफी भयंकर भयानक हादसा तो था, उसको याद करके रोंगटे खड़े होते हैं। तो अभी हमारा राइट ईयर ही ठीक है, लेफ्ट ईयर अभी भी तकलीफ देता है, उधर से कम सुनाई पड़ता है। हमको तो लगता है जो फैसला आया है सभी आरोपियों का है, अब क्या है वो तो कोर्ट जाने, वो लोग जाने कैसे क्या किए, सजा तो कड़ी से कड़ी होनी ही चाहिए।
विशेष मौका अदालत के इस फैसले से न्यायिक क्षेत्र में भी काफी खुशी व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र के विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस बारे में कहा,
ये ऐतिहासिक फैसला मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस बेरहमी से इन आरोपी ने चलते ट्रेन में बम ब्लास्ट करके कई बेगुनाह लोगों की जान ली थी, इसके लिए प्रोसिक्यूशन के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, फिर भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव कर दी। दूसरी अहम बात यह है कि इस ट्रायल को बहुत लंबा समय लगा, लेकिन जिस तरह से आरोपी ने इस ट्रायल की खिंचाई की और सबूत को डिस्ट्रॉय करने की नाकाम कोशिश रही, लेकिन ये उनकी पूरी कोशिश आज नाकाम हो गई।
आज अदालत में इस फैसले का केवल ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है, पूरा फैसला सोमवार से पढ़ा जाएगा जो अगले 8 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें होंगी और उसके बाद दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा।
2006 मुंबई धमाकों में 12 लोग दोषी करार, ये थे मुंबई से अश्विन अघोर। पाकिस्तान की रेंजर टीम ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आए पाकिस्तान की रेंजर टीम ने भारत के सीमा सुरक्षा बलों से सीमा पर तनाव कम करने के तरीकों पर बात की। राजनाथ सिंह का कहना था कि सीमा पर गोलीबारी नहीं होनी चाहिए। मैंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से पूछा कि भारत ने किन मुद्दों को इस बैठक में उठाया।
भारत का जो अपना एजेंडा तो शुरू से हमने तय कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ जितना हमारा जो सीमा लगा हुआ है पूरी सीमा में शांति होना चाहिए, और हमारे तरफ से कोई इस तरह से कार्यक्रम हमने रखा नहीं जिससे वहाँ में कोई विवाद हो जाए या शांति को भंग हो जाए। तो हमारा ये मानना है कि जो भी होता है वो पाकिस्तान साइड से होता है, तो उसमें उसको लेकर के जो जो पाकिस्तान से जो गतिविधि होता है जो हमारा कंसर्न था वो सारा पॉइंट्स रखे हैं, 12-13 पॉइंट्स थे वो पूरा रखा है, और पाकिस्तान ने भी अपने जो पॉइंट्स थे वो वहाँ के डायरेक्टर जनरल पाक रेंजर्स के माध्यम से रखा है।
जी, आप बातचीत को अच्छा बता रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान का रुख भी सकारात्मक था?
हाँ, उनका पॉजिटिव था, जैसे कि डायरेक्टर जनरल के दोनों के लेवल में भी कांटेक्ट रहेंगे, और जमीन पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है खास करके जो घुसपैठियां होते हैं तो उसमें फायरिंग होते हैं, तो फायरिंग होने से फिर एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं, फिर उसका जवाबी कार्रवाई होता है, तो इसको रोकने के लिए काफी पॉइंट्स पे चर्चा हुआ, और कमांडर लोकल कमांडर लेवल में भी बातचीत होने के लिए, और रिस्ट्रेन करें कि तरह का फायरिंग ना हो, उसको लेकर के डिटेल में बातचीत हुआ और नतीजा अच्छा निकला।
हम ये जानना चाहेंगे कि जो हम मीडिया में पढ़ पा रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि भारत की तरफ से पहली गोली नहीं चलाई जाएगी, इसका क्या क्या मतलब हुआ?
ये नहीं कहा राजनाथ जी ने, राजनाथ जी ने ये कहा कि दोनों तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए, ये कहा, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जैसे हमको लगता है कि उनके तरफ से फायरिंग हुआ तो यहाँ जाहिर से बात की उसका जवाब दिया जाता है, इसलिए पहला फायरिंग ना करे, तो पहला फायरिंग नहीं होगा तो जवाब भी नहीं होगा।
तो पाकिस्तान क्या इस बात से सहमत दिख रहा था?
उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल वो रेस्ट्रेन करेंगे, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस का कुछ पॉइंट्स रखे हैं, और मेरे ख्याल से इसके बाद थोड़ा सा माहौल में सुधार होना चाहिए।
जी, ये रेंजर्स की बैठक थी, इससे पहले सचिव सर की बातचीत होनी थी, आपको नहीं लगता कि ये एक निचला स्तर है, जिसे आप बोल रहे हैं कि हाँ बहुत ही सकारात्मक था, नतीजे अच्छे निकले हैं, लेकिन एक अच्छा मौका जो भारत और पाकिस्तान के पास आया था वो खो दिया?
नहीं, आज वो राजनाथ सिंह जी ने कहा है इस बात को, और ये भी कहा कि अच्छा होता तो ऐसे लेवल का भी बातचीत हो जाते, तो वो नहीं हो पाया, उसके लिए खेद जताया है, और यहाँ से संदेश भी भेजा है पाकिस्तान सरकार को कि उनके डायरेक्टर जनरल पाक रेंजर्स के माध्यम से कि आप ये मैसेज वहाँ पाकिस्तान सरकार को भी पहुँचा दीजिएगा कि हम बातचीत के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन उसके लिए माहौल अच्छा रखें, और जब सरहद पर शांति रहेगा तो बातचीत होने में भी सुविधा होगा, ये बात कहा।
तो क्या पाकिस्तान अपनी तरफ से भरोसा दिला पाया है कि सीमा पार जो है गोलियां नहीं चलेंगी, अब शांति बनी रहेगी, संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं होगा, क्या इस तरह का भरोसा मिल पाया भारत को?
भरोसा दिया है, और दोनों में कुछ जो अभी डिटेल्स जो है बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस किस मुद्दे पर सहमति हुआ है, और रेस्पॉन्स जो है पॉजिटिव रहा है।
तो भारत ने पाकिस्तान की रेंजर्स टीम के साथ मुलाकात को बताया सकारात्मक, ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
1965 में 4 सिख, 16 पंजाब और 4 मद्रास के जवानों से कहा गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर बरकी गांव पर कब्जा करें और इच्छागिल नहर पर पहुंचकर लाहौर के लिए खतरा पैदा करें, ताकि पाकिस्तानी अखनूर से अपने सैनिक हटाने के लिए मजबूर हो जाएं। 1965 युद्ध की 11वीं कड़ी में रेहान फजल बता रहे हैं उस बरकी की लड़ाई के बारे में।
फिरोजपुर में एक मेमोरियल बना है जिसमें कि बरकी मेमोरियल बोलते हैं जिसको, वहाँ पर एक पाकिस्तान का पैटर्न टैंक है और एक माइलस्टोन रखा हुआ है जो वो वहाँ से उठा के लाए थे, लाहौर 16 या लाहौर 19 लिखा हुआ है उस पर, कि हम लाहौर के कितने करीब पहुँच गए थे ये दिखाने के लिए लाए थे। तो वहाँ से गई थी 4 सिख और वो बहुत ही बहादुरी से लड़े। पिल बॉक्स बनाए हुए थे पाकिस्तान में, नया टेक्निक पाकिस्तान ने यूज़ किया था जिसमें कि दीवारों में भी मेटल लगा हुआ था और 3 फुट चौड़ी दीवारें थी जिसके अंदर स्लिट्स बनी हुई थी जिसके थ्रू वो बंदूक बाहर निकाल करके फायर करते थे। तो जो लोग लड़ने गए थे वो कहते थे कि कोई तरीका ही नहीं था उन पिल बॉक्सेस को, आप किसी भी चीज़ से उनको हार्म नहीं कर सकते थे। द ओनली वे टू डू इट वॉज फॉर देम टू फिजिकली गो देयर, पीछे दरवाज़ा होता था, या तो वो दरवाज़ा आप तोड़ के अंदर घुसिए या फिर जहाँ से वो फायर कर रहे हैं उनकी गन हटाइए और अपना ग्रेनेड अंदर फेंकिए।
ये है रचना बिष्ट, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर एक किताब लिखी है। उनका मानना है कि बरकी की लड़ाई को 1965 की 5 सबसे भयंकर लड़ाइयों में गिना जा सकता है। 5 सितंबर 1965 की सुबह जैसे ही 4 सिख के जवानों ने गेहूं के खेतों को पार किया, उनके कानों में दूर से आती अजान की ध्वनि सुनाई दी। रात होते होते वो खालड़ा पहुंच गए। खालड़ा और बरकी के बीच एक गांव पड़ता है हुडियारा, इसी नाम से वहां पर एक नाला भी है। उस दिन वो हुडियारा तो पहुंच गए लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आ रही जबरदस्त गोलाबारी ने उन्हें नाला नहीं पार करने दिया। योजना बनाई गई कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना पर हमला बोला जाए, लेकिन ये योजना तब धरी की धरी रह गई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने हुडियारा पुल उड़ाकर पुल के पार पोजीशन ले ली। पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच 4 सिख की 2 कंपनियां पुल को दोबारा बनाने में जुटी रहीं। शाम तक पुल बनकर तैयार भी हो गया लेकिन जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वो जगह टैंक गुजरने के लिए काफी नहीं है। लेकिन सेंट्रल इंडिया हॉर्स के कर्नल जोशी ने जोखिम उठाते हुए सबसे पहले अपने टैंक को पुल पर से ले जाने का फैसला किया। उनके पीछे और टैंक भी गए और 8 सितंबर की सुबह होते होते सारे टैंक हुडियारा नाले के पार थे। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी की जा रही थी। सैनिक भाषा में इसे कारपेट बॉम्बिंग कहा जाता है। उस इलाके के एक एक इंच पर उनके गोले गिर रहे थे। ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह याद करते हैं,
दुश्मन की आर्टिलरी फायरिंग इतनी इंटेंस और एक्यूरेट थी, बाद में पता चला उस 1.5 घंटे में दुश्मन ने 3,000 गोले हमारी बटालियन के ऊपर चलाए। इसके अलावा वो जो 11 पिल बॉक्स थे, पिल बॉक्स एक तकरीबन 4 स्क्वायर मीटर का एक घर सा बना होता है पक्के कंक्रीट का, 30 सेंटीमीटर उनकी मोटाई थी, उसको आर्टिलरी का गोला या टैंक का गोला उसकी छिल्तर भी नहीं उड़ा सकता था। एक पिल बॉक्स में 3 से 4 जवान एक NCO या JCO के अंडर होते थे। उनके पास थी एक ब्राउनिंग मशीन गन, एक नॉर्मल लाइट मशीन गन, स्टैन या राइफल और इतना एमुनिशन और ग्रेनेड के 2 दिन वहाँ बैठे रहें तो लड़ते रहेंगे जितना मर्जी फायर कर लें। उनमें 6 या 7 तो थे बरकी के, आगे एक पानी का टोबा था उसके साथ, 5 थे HOGL कैनाल के इंडियन बैंक की तरफ। उनका अपनी तरफ वाला बैंक आगे वाले बैंक से 3 फुट ऊंचा था, उस तरफ भी पिल बॉक्स थे और उनमें से वो ऊपर से फायर कर सकते थे।
तय हुआ कि पहले 4 सिख के सैनिक रात में बरकी पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल इंडिया हॉर्स के शर्मन टैंक अपनी बत्तियां जलाए हुए फायरिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे और उनकी आड़ लेते हुए इन्फेंट्री के सैनिक आगे जाएंगे। हमले से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह ने अपने सैनिकों को संबोधित किया।
साड़ी किस्मत बहुत चंगी है, आज मौका मिलिया है अपने घरां नूं वापस जाण दा। अज हाथियां नाल साड़ी बारात जाएगी, ऐसी आतिशबाजी होएगी कि दिवाली भी फिक्की पै जाएगी। बरकी दुल्हन दी तरह है, तुसी अज दुले हो, शेरो तगड़े हो जाओ, अज बरकी बिहोनी है।
लेकिन लगता है पाकिस्तानियों को भारतीय हमले का आभास हो गया। उन्होंने अपने तोपखाने से भारी फायर करना शुरू किया। पाकिस्तान ने पूरे गांव में 11 पिल बॉक्स बना रखे थे, उनमें छेद बनाए गए थे ताकि गन फायरिंग की जा सके। कर्नल मनमोहन सिंह याद करते हैं,
हमारी 25 पाउंड की तोपों का भी उन पिल बॉक्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। एंटी टैंक गन भी पूरे पिल बॉक्स को मामूली नुकसान ही पहुंचा पा रही थी। उनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन पिल बॉक्स में घुसा जाए या इनके अंदर हैंड ग्रेनेड फेंक कर फायरिंग कर रहे लोगों को खत्म किया जाए।
जब बरकी 400 मीटर रह गया तो चार सिख और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हाथों की लड़ाई होने लगी। भारतीय जवान रेंगते हुए पिल बॉक्स की ओर बढ़े और उनके अंदर ग्रेनेड फेंक कर उन बंदूकों को शांत किया।
दुश्मन की थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गोलियां हमारी तरफ उन पिल बॉक्स से, बंकर से, दूसरी पोजीशनों से, क्योंकि घरों को भी उन्होंने पक्का कर रखा हुआ था, हमारे ऊपर फायर हो रहा था। उस वक्त एक रिवाज था हमारी आर्मी में भी, उनके भी, कि हर तीसरा राउंड जो मशीन गन का है वो ट्रेसर होता था, जिसके पीछे से लाइट निकलती थी ताकि दिखाई दे वो फायर कहाँ हो रहा है और वो हम ठीक कर सकते हैं अपने एम को। अब वो सारे ट्रेसर हमारे ऊपर आ रहे थे। हमने वो फॉर्चुनेटली क्या किया कि उन्होंने फिक्स लाइन लगा रखी थी अपने हथियारों की। अब उन्होंने लगा रखी थी 2000 गज के ऊपर, 1800 गज के ऊपर। उसमें एक पैराबोला बनता है जिसमें के गोली ऊपर जाके फिर नीचे को आती। अब हम उसके नीचे से आगे बढ़ते गए अनलेस उनके फॉरवर्ड एलिमेंट से हाथों पाई हुई। ये सिर्फ आखिरी 400-500 गज या 500-600 गज का एरिया होता है जहाँ से उसकी ट्रेसर गोलियाँ उठती हैं, वहाँ से फिर उनका एम स्ट्रांगली हमारे ऊपर आना शुरू हो गया। तो हमारी ए और चार्ली कंपनी ने उस वक्त धावा बोल दिया, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जकारा, और वहाँ से भाग लिए। लेकिन फायर एंड मूव टैक्टिक्स, एक पाँव जमीन पर, एक पाँव आगे बढ़ो। हमारी एक कंपनी में 3 पलटूनें होती हैं, एक पलटून आगे बढ़ती है, दूसरी फायर से मदद देती है, फिर जो पहले रुकी हुई है वो आगे बढ़ती है और जो पहले गई थी वो उसको सपोर्ट देती है, तीसरी पलटून फिर आगे बढ़ती है। इस फायर एंड मूव से लेकिन लिटरली भाग आगे बढ़ते गए, पिल बॉक्स के पास पहुंचे, पिल बॉक्स में ग्रेनेड फेंके, एक दो जवानों के हाथ जल गए, उन्होंने उनकी जो मशीन गन लाल और रखी फायर कर करके उनको खींचा, वो बाहर निकले मोर्चों से, हाथों पाई हुई, किसी के जबारे पे बट लग रहा है, मैन टू मैन सामने लड़ाई, संगीनों का इस्तेमाल हुआ। अल्फा और चार्ली कंपनी ने 9:10 पर बरकी के ऊपर कब्जा कर लिया और सक्सेस सिग्नल उन्होंने वायरलेस पे भी दे दिया और 2 वेरी लाइट पिस्टल फायर किए, जिसका मतलब था बरकी पे कब्जा हो गया।
इससे पहले लेफ्टिनेंट कमलजीत सिंह को निर्देश दिए गए कि वे 16वें माइलस्टोन पर रुककर पीछे से आ रहे टैंकों का इंतजार करेंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे। जब 8 तक टैंक नहीं आए तो लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह रेडियो पर चिल्लाए, भाई बंड और नो भाई बंड, एवरी जवान और 4 सिख इज भाई बंड, टेल देम टू मूव। कमलजीत सिंह जानते थे कि भाई बंड एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब था टैंक। टैंकों का इंतजार किए बगैर 4 सिख के जवान बरकी की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन 20 मिनटों में ही वहां टैंक पहुंच गए और उन्होंने बरकी पर गोले बरसाने शुरू कर दिए।
हमारी आपस में अनफॉर्चुनेटली कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह पहले हो नहीं पाई थी। टैंकों ने दाहिनी तरफ फायर करना शुरू कर दिया बरकी की तरफ, अब वो फायर पीछे से हमारे बंदों के ऊपर जा रहा था। उनकी दुश्मन का तो थोड़ा ऊपर से था पहले पहले, हमारे टैंकों का फायर एक्यूरेट। जब वो टैंक मेरे बराबर आए तो मैं भाग के जो सबसे नियरेस्ट टैंक था, जो बिल्कुल रोड के ऊपर था, उसके पास पहुंचा। अब मैं उनसे अंदर बात करनी, उन्होंने बंद किया हुआ टैंक। वहां हमारे पास टैंक के ऊपर एक फोन होता है जिसको बोलते हैं टैंक इन्फेंट्री का, आपस में इन्फेंट्री आर्मर कम्युनिकेशन करने के लिए। मेरे को वो मिला ही नहीं, फिर मैं टैंक के ऊपर चढ़ गया। जब टैंक के ऊपर चढ़ रहा था तो मेरा जो पीछे जवान होता है, जो मेरा सेट लेके आ रहा था, उसका बाजू टैंक के MMG के सामने आ गया। वो बस्ट लगा, उसका बाजू तकरीबन वहीं उड़ गया। जो क्यूपला होता उसके ऊपर मैं अपने स्टैंड के साथ, उल्टा स्टैंड के साथ उस पर मारा, उसमें के टैंकों का एक दफेदार निकला। मैंने उसे बताया दाहिने मत फायर करो, हमारा तो अटैक काफी आगे चला गया है बाईं तरफ। उसने फिर सब टैंकों को पीछे पास किया और टैंकों ने फिर अपना फायर बाईं तरफ स्विच करना।
इस बीच घायल हो चुके भारतीय सैनिकों को फर्स्ट एड भी नहीं दी जा रही थी, उन्हें छुआ तक नहीं गया क्योंकि एक एक मिनट कीमती था। पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत लोग मारे गए थे। इसके बाद 4 सिख का रोल खत्म हो गया। इसके बाद की भूमिका थी 16 पंजाब की, जिन्हें छोगिल नहर पर कब्जा करना था। 4 सिख वापस जा ही रही थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। बरकी हमले में शामिल थे कर्नल सुंदर सागर ढिल्लो भी।
कैजुअलिटीज तो काफी थी, पाकिस्तानी काफी मरे हुए थे इधर उधर। PW में हमारे पास टाइम नहीं था किसी को भी कैप्चर PW बना सके, हमने कोई PW नहीं लिया। जब हमने मूव करना शुरू किया तो एनिमी ने फिर से बहुत एरिया लाइट अप कर दिया और हैवी शेलिंग हमारे ऊपर आई। यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी शेलिंग में, यानी उनके पास जो भी था मोर्टर आर्टिलरी की जितनी भी गन्स होंगी ना, वो फायर तकरीबन एक घंटा तक चल रहा। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो हम फायर के बीच में से ही चलते रहे। इसी के दौरान में मैंने देखा कि मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे खून निकल रहा था, शर्ट पे मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा ये कुछ थोड़ा सा स्टिकी सा पता नहीं क्या है। तो मैंने अपने सहायक या ऑपरेटर से पूछा तो मैं कोई गोली तो नहीं, कोई शेल शूलिंग तो नहीं लगी है? तो वो भी पास में खड़े थे, वो जो दुश्मन लाइट कर रहा था उसने कहा कि सर, बैटमैन ने बोला कि सर हमें तो कुछ नहीं लगा है, आपके मुंह पे बड़ा खून बह रहा है। तो मैंने जब अपने मुंह पर हाथ लगाया ऐसे, तो मैंने सारा वो खून मेरे को हाथों में लगा, तो मैंने नाक हाथ लगाया तो बिल्कुल नंब हो गया था, शेल लगा मेरे यहाँ के। मैंने सोचा भाई नाक तो गया, तो फिर मेरे मन में पता क्या ख्याल आया, मैंने कहा भाई सुरेंद्र सागर तेरा नाक भी गया और तू शादी से भी गया, तेरी अब शादी नहीं होने की है। अगर नाक उड़ गया तो तेरे से कोई लड़की भी शादी नहीं करेगी, बट भगवान बड़ा मेहरबान है, हमें बहुत अच्छी सुंदर बीवी मिल गई बाद में।
अगले दिन ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह एक ट्रेंच में बैठे थे, प्यास से उनका गला सूख रहा था। उन्होंने एक जवान से पानी लाने के लिए कहा। उन्होंने जब पानी पिया तो उन्हें उसका स्वाद कुछ अजीब सा लगा।
मैंने किसी को बोला पानी पिलाओ, पानी आया, पानी पिया, स्वाद कुछ और सा लगा, रंग देखा थोड़ा थोड़ा लाल था। मैंने कहा कहाँ से लिया है? उसने कहा सामने जो वही तालाब था उसमें से, प्यास इतनी लगी थी दो घूंट और पिए और कप को फेंक दिया। ये सिचुएशन अगर मेरी थी अब समझ सकते हैं मेरे जैसे उस जवाना की क्या, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से खुला मैदान था ना, खुले मैदान में एक मूवमेंट भी होता था दुश्मन की आर्टिलरी फायर आ जाता था। वहाँ पौंड था, पौंड में पता नहीं कितने जानवर, गायें भैंसें मरी पड़ी थी और कुत्ते, लाशें उनकी, हमारी हमने निकालनी शुरू कर दी थी अपनी।
पंजाब की तरफ से बरकी का रक्षण किया था 17 पंजाब ने, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर राजा अजीज भट्टी। वो बहुत बहादुरी से लड़े और बरकी पर कब्जा होने के एक दिन बाद भारतीय गोले के शिकार हुए। उस समय वो एक पेड़ पर चढ़कर भारतीय सैनिकों पर गोलियां बरसा रहे थे। उन्हें मरणोपरांत पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पदक निशाने हैदर दिया गया।
जिस कमांडर के आदमी पहले तो पीछे आर्टिलरी का फायर इतना एक्यूरेट ला रहे हैं, उसके साथ बड़ा अच्छा आर्टिलरी ऑफिसर होगा, फिर इतने हथियार हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं और बाद में वो जेसीओ जवान जो है वो हाथापाई करने के लिए वहाँ तैयार है, और जब काफी मारे गए जो कुछ बचे अगर भागे भी तो देखो वो छुगल कैनाल को क्रॉस करते हुए वो भी अपना फायर भी कर रहे थे फिर पीछे गए। मैं तो उनको बोलूंगा अच्छे तगड़े ट्रुप्स है, और ऐसे ट्रुप्स की कमांड करने वाला जो लीडर होता है, कहीं भी जो लीडर होता है लड़ाई में उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो ये मेजर अजीज भट्टी मस्त बहुत ही बहादुर, बहुत ही सियाना कमांडर होगा जिसने उस लड़ाई को इतनी देर तक इतने अच्छे तरीके से संभाला।
हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखरी आखरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आपको बरकी की लड़ाई पर रेहान फजल की 11वीं कड़ी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इस कड़ी को आप सुबह विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं हरिता कांडपाल से मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीबीसी हिंदी के साथ ट्विटर चैट के दौरान कहा कि गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका को रूसी सेना के साथ सहयोग पर प्रतिबंध हटाने और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार से बातचीत करने पर विचार करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से तेल के उत्पादन में कमी आ सकती है। ओपेक के सदस्यों ने तेल की कीमतें कम कर दी हैं, जिनमें मुख्य है सऊदी अरब। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने चेतावनी दी है कि मध्य सितंबर के बाद से जो प्रवासी गैरकानूनी तरीके से हंगरी की सीमा में प्रवेश करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जर्मनी ने कहा है कि आने वाले दिनों में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेना को तैनात किया जा रहा है। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में विस्थापितों के कैंप में हुए एक धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। धमाका मलखोई कैंप के गोदाम में हुआ, जहां योला में बोको हराम के हमले से प्रभावित हुए लोगों के लिए राहत शिविर बनाया गया था। सिंगापुर में हुए त्वरित चुनाव के लिए बड़ी संख्या में वोट पड़े हैं। अभी वोटों की गिनती जारी है। विपक्षी पार्टियों को इन चुनावों में वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक तकनीकी सहयोगी राजेश चौहान के साथ मुझे दीजिए इजाजत।